नमस्कार भारत 30 सितंबर दिन सोमवार, मैं हूं वात्सल्य राय। बारिश से बेहाल देश के कई हिस्से, गुरुवार से अब तक कम से कम 120 की मौत, बिहार की राजधानी पटना में जनजीवन ठप,
चारों ओर पानी ही पानी। अब डर लगता है कि कब बारिश और तेज हो जाए, पानी घर में आ जाए, कीड़े मकोड़े आ जाए।
प्याज के निर्यात पर रोक, लेकिन क्या काबू में आएंगी बढ़ती कीमतें?
कुछ रुपए में 2-4-5-10 रुपए का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
और राजस्थान में सरकारी स्कूलों के साथ जुड़े हरिजन शब्द की विदाई, अनुसूचित जाति संगठनों ने की थी आपत्ति।
अम्बेडकर संगठन और दूसरे संगठनों ने हमें ये बताया कि हरिजन संवैधानिक नहीं है वर्ड, इसलिए फिर हमने सर्कुलर निकाला।
पाकिस्तान डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। पिछले चार दिनों में देश भर में भारी बारिश की वजह से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार से कम 93 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा बिहार में मूसलाधार बारिश जारी है, जहां पिछले 48 घंटों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे रेल यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूलों का संचालन प्रभावित हुआ है। साथ ही बिजली की आपूर्ति भी बाधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में राइट टू रिप्लाई के तहत दिए गए भारत के जवाब पर पाकिस्तान ने भी अपना जवाब दिया है और आरोप लगाया है कि भारत कश्मीर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण पर भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत जवाब दिया था और उनकी कही हर बात को झूठ बताया था। पाकिस्तान के प्रतिनिधि जुल्कर नैन चीना ने रविवार को इसी पर अपने देश की ओर से जवाब दिया और कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनिया के सामने भारत के वास्तविक क्रूर चेहरे को उजागर किया है। यूक्रेन में पूर्व प्रोसिक्यूटर जनरल ने बीबीसी से कहा कि उनके देश के पास ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जाँच करें। यूरी लुत्सेंको ने कहा कि बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ अगर कोई भी जांच होगी तो वो अमेरिका में ही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से अमेरिका का मसला है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील रूडी से ये जरूर कहा था कि यूक्रेन इस मामले में आधिकारिक क्षमता के तहत ही अमेरिका की सहायता कर सकता है। मैंने राष्ट्रपति के वकील से कहा था कि अगर आप अमेरिका में अपनी जांच की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हम आपको आधिकारिक मदद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हम आपको अनुरोध करने पर सहायता देंगे, या तो सवाल जवाब के तौर पर या फिर संयुक्त जांच टीम के माध्यम से। यूरी लुत्सेंको के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रिया के लोगों ने रविवार को मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान किया। ये चुनाव मई में एक वीडियो स्टिंग स्कैंडल के सामने आने के कारण गठबंधन सरकार के गिरने की वजह से कराया गया है। पूर्व चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज की कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी आम चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उम्मीद जताई जा रही है कि पार्टी बहुमत भी हासिल कर ले। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुर्ज ने कहा कि वो अपने सहायकों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं।
Well, to be honest, it's an amazing result. We are extremely thankful.
अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये बेहतरीन परिणाम है। हम बेहद शुक्रगुजार हैं। ये पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। हम अपने देश के लोगों को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इस देश की और बेहतर सेवा कर सकें। कुर्ज के शब्द। हांगकांग में पुलिस और लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच कई हिंसक झड़पों की खबर है। हजारों की संख्या में लोग हांगकांग की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर उतरे। पिछले 17 हफ्तों से हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से पहले पुलिस पर ईंट और पेट्रोल बम फेंके, जिसके बाद पुलिस ने पानी की तेज धार का इस्तेमाल किया और रबर बुलेट्स भी दागी। ब्रिटिश विदेश डोमिनिक राब ने चीन को चेतावनी दी है कि वो हांगकांग के मामले में हस्तक्षेप न करें। मॉस्को पुलिस का कहना है कि मॉस्को के हालिया स्थानीय चुनावों से पहले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए करीब 20,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। पानी बन गया है परेशानी। बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बीते दो दिन से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई शहरों में सड़क पर इतना पानी भर गया है कि न वाहन चल पा रहे हैं और न ही लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि बारिश की वजह से कल उत्तर प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार से अब तक देश में कम 120 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में बारिश से जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच गई है। राजधानी पटना की स्थिति बेहद खराब है। सड़कें पानी से भरी हुई हैं और सरकार भी लोगों तक राहत नहीं पहुंचा पा रही है। इन मुश्किल परिस्थितियों के बीच भी हमारे सहयोगी नीरज प्रियदर्शी शहर का हाल जानने निकले। उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की। उनकी रिपोर्ट सुनिए भूमिका राय से।
आसमान हो या जमीन, पटना में फिलहाल हर तरफ पानी ही पानी है। गुरुवार से शुरू हुई बरसात अब तक थमी नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बीते 48 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है और 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सड़कें पानी से लबालब हैं और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। पटना निवासी साधना पाठक को चिंता है कि अब उनके घर में ही पानी ना आ जाए।
चारों ओर पानी ही पानी, अब डर लगता है कि कब बारिश और तेज हो जाए, पानी घर में आ जाए, कीड़े मकोड़े आ जाए।
वो रोजमर्रा का सामान जुटाने की दिक्कतों को भी बयान करती हैं।
हमारा बेटा है वो किसी तरह से निकल के जाता है पूरे कमर तक पानी में और भींग के कुछ सामान लाता है तो किसी तरह से बस हम लोग भोजन कर ले रहे हैं, बस इतना ही है।
शहर के कंकड़बाग इलाके में स्थिति भयावह हो चुकी है। कॉलेज और स्कूलों के हॉस्टल में छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। छात्राओं की शिकायत है कि उन तक मदद नहीं पहुंच रही। शांभवी नाम की एक छात्रा ने हॉस्टल में फंस गई अपने दोस्तों की मुश्किलों की जानकारी दी।
हमारे ऐसे साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं उनके साथ काफी परेशानी है। क्योंकि मैं तो घर में रहती हूँ तो मेरे लिए फिर भी ठीक है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। एक तो कि रहने के लिए कोई ढंग का जगह नहीं है, माँ बाप से दूर है और दूसरे शहर में है तो ये बहुत स्थिति इतनी खराब है। तो डर का भी माहौल है, साथ में खाने पीने के लिए भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि हॉस्टल बंद हो गया है।
लगातार हो रही बारिश और जलभराव की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है और कामकाजी लोग भी दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं। स्थानीय पत्रकार अंकिता को सुनिए।
हर जगह हर गली मोहल्ले में पानी कमर या फिर कमर से ऊपर तक हो चुका है। तो एक लड़की होने के नाते हम उस पानी में निकल के बाहर रिपोर्टिंग या फिर जो भी कामकाजी महिला है वो बाहर नहीं निकल सकती, वो पूरी तरह भींग जाएंगी।
इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रकृति पर किसी का बस नहीं है, लोगों को हौसला बुलंद रखना चाहिए। विपक्षी दल इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता रीता सिंह कहती हैं,
सिर्फ उनके कह देने थोड़ी होगा, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। 15 साल से उनकी सरकार है, 15 साल में ड्रेनेज सिस्टम को सही नहीं कर पाए और आज बोल रहे हैं कि वर्षा हुई रही तो हम क्या करें।
पटना के लोगों के सामने सवाल कई हैं और सबसे अहम सवाल है कि लगातार हो रही बारिश थमेगी कब।
रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। पटना के कई इलाकों में बिजली भी नहीं है, लोग मोबाइल तक चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच पटना की सड़कों पर ली गई कुछ तस्वीरें कल सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। ये तस्वीरें एक मॉडल की थीं जो पानी से भरी सड़कों पर घूमती दिख रही थीं। इन तस्वीरों को लेकर कई लोगों ने उनकी आलोचना की और इसे बाढ़ में घिरे लोगों के साथ मजाक बताया तो कई लोगों ने ये कहते हुए उनका समर्थन किया कि इससे पटना की स्थिति पर लोगों का ध्यान गया है। उनका पक्ष जानने के लिए हमारे साथी अभिमन्यु कुमार साहा ने उनसे बात की।
इस फोटोशूट के पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं था कि हम दिखाना चाह रहे हैं, हम अपनी मस्ती दिखा रहे हैं या फिर ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। ऑलरेडी सौरभ अनुराज ने पहले भी लिखा है, पहली बात ये शूट पहले हुआ था जब बाढ़ आने वाली थी उसके पहले हुआ था, ये परसों सुबह की शूट है। और उस टाइम में ऐसा किसी को नहीं पता था कि बाढ़ आ जाएगी या ऐसा कुछ, और ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था, ये कॉन्सेप्ट फोटोग्राफर का था। और शूट ऐसा कुछ मजा के लिए या फिर किसी चीज के लिए हम लोग नहीं कर रहे थे, और हम किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं। आई एम रियली सैड एंड आई हैव कंसर्न फॉर देम। ऐसा मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि लोग यहाँ मर रहे हैं और हम लोग मजे कर रहे हैं, बारिश मजा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आई एम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये दैट दिस इज पटना, दिस इज बिहार, और यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को काफी ज्यादा बड़ा बना दिया जाता है।
कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आपका जो गेस्चर था, आपकी जो हंसी थी वो ठीक नहीं थी।
हाँ तो ठीक नहीं थी, आई नो ठीक नहीं थी, बट इट्स लाइक उस टाइम में वो सिचुएशन नहीं था, हम लोगों ने फ्यूचर नहीं देखा था कि क्या हो जाएगा। तो इवन हम लोग पानी खोज रहे थे कि कहीं पानी मिल जाए, और फोटो शूट पहले भी लोग रेनी सीजन में लोग रेनी फोटो शूट कराते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। आप पहले भी देखे होंगे पिक्चर्स आते हैं रेनी फोटो शूट एंड दिस और दैट, टाइम में कुछ नहीं पता था ऐसा डिजास्टर आ जाएगा। और फोटो जब पोस्ट हो रहा था उस टाइम भी इतना बुरा सिचुएशन नहीं था, कल शाम में बुरा हुआ है, कल शाम से फिर सारा कुछ हुआ है कि हाँ यहाँ पे पानी हो गया। रेड अलर्ट भी जब आया तो वो शाम में आया, सुबह में तो नहीं था, हमें तो नहीं पता था, हम तो फ्यूचर नहीं देख के रखे हैं। प्लीज इसे ट्रोल करना आप लोग बंद करो।
तो मतलब कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आपको मिली, रिएक्शन मिले इस फोटो के बाद?
ऑब्वियसली किसी भी फोटो पे किसी भी चीज पे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बुरे कमेंट्स भी आते हैं। अगर 100 अच्छे कमेंट्स है और उसमें एक बुरा कमेंट हो तो लोग उस बुरे कमेंट को ही देखते हैं, अच्छा कमेंट कोई नहीं देखता है।
तो क्या फैमिली कुछ रिएक्ट की, आपके आस पड़ोस आपके जानने वाले कुछ ऐसा रिएक्ट किए जिससे आप बहुत आहत हुई?
फैमिली कंसर्न दिखाएगी कि मतलब इतना ट्रोलिंग हो रहा है तो उन लोगों को बुरा लगेगा।
ये थी वो मॉडल जिनकी पटना की सड़कों पर ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। और अब बात प्याज की। प्याज की बढ़ती कीमतें कई आंखों में आंसू लाने लगी हैं। कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क आएगा, सुनिए नवीन नेगी की रिपोर्ट।
देश में प्याज के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमतें 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। प्याज की इन बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने हर किस्म के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने एक अधिसूचना जारी कर बताया है कि सभी किस्म के प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। DGFT देश में आयात और निर्यात से संबंधित मुद्दों पर नजर रखता है। इससे पहले 13 सितंबर को DGFT ने प्याज के निर्यात पर अंकुश लगाने के मकसद से $850 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य भी तय किया था। माना जा रहा है कि निर्यात पर रोक लगाने का उद्देश्य प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाना है, लेकिन क्या सच में इस कदम से प्याज की कीमतों में फर्क आएगा? दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में प्याज व्यापारी संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र बुद्धिराजा मानते हैं कि यह असर कुछ दिनों के लिए दिखेगा, लेकिन दोबारा कीमतें ऊपर चढ़ जाएंगी।
बांग्लादेश जा रहा था रोज 50 तक जा रहा था 20 प्रति टन का, अब बांग्लादेश बंद हो जाएगा तो कुछ रुपए में 2-4-5-10 रुपए का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी 5-10 दिन का मंदा आ जाएगा, फिर दोबारा जाके वही 70-50-60-70 रुपए किलो बिकेगा, हम तो बिकेगा नहीं प्याज।
भारत में प्याज का निर्यात प्रमुखता महाराष्ट्र से किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश की वजह से प्याज की फसल और अन्य राज्यों से उसकी आवक दोनों ही प्रभावित हुई है। अब इसके निर्यात को रोकने से प्याज के निर्यातकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस संबंध में पुणे से एक प्याज निर्यातक दनेश शाह कहते हैं कि निर्यात बंद करने से उनके खरीदारों का उन पर से भरोसा कम होने लगता है।
एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे पहले के कमिटमेंट्स है वो हमको बस सिर्फ उसमें हमको जो क्योंकि लोगों ने फॉरेन के पार्टियों ने LC खोली हुई है वो सिर्फ पूरी करनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि उसमें हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट रहता है और पॉलिसी के हिसाब से भी क्योंकि इसमें देश का भी नाम खराब होता है, हमारा भी नाम खराब होता है अगर हमने जो हमारे कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए तो, क्योंकि जब भी हमने पहले के कमिटमेंट पूरे नहीं किए हम कंटिन्यूसली उनको माल नहीं दे पाते तो वो इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए खराब रहता है, हमारी क्रेडिबिलिटी मार खाती है।
प्याज व्यापारी लगातार कह रहे हैं कि बाजार में प्याज की कमी की वजह से दाम बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार का दावा है कि प्याज की कोई कमी नहीं है। इस बीच प्याज निर्यातक दनेश शाह कहते हैं कि इस समय भले ही प्याज कुछ कम है लेकिन दिसंबर आते आते बाजार में इतना प्याज हो जाएगा कि सरकार के लिए यह एक नई सिरदर्दी पैदा कर देगा।
इसका लॉन्ग टर्म सिर्फ एक इफेक्ट है क्योंकि हम लोग सिर्फ दो महीने की शॉर्टेज देख रहे हैं। दिसंबर 15 के बाद में इंडिया में इतना प्याज होगा कि ये सरकार के लिए दूसरा हेडेक हो जाएगा कि ये माल का क्या क्या करने का है, क्योंकि देश में जो भी उत्पादन होगा वो अपने डिमांड से कम 30-40% ज्यादा रहेगा।
इस बीच खबर यह भी है कि सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए अपने बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज निकालने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने प्याज की जमाखोरी करने वाले लोगों को भी ऐसा ना करने की चेतावनी दी है। देखना होगा कि प्याज के निर्यात को रोकने और अन्य देशों से प्याज मंगवाने के बाद इसकी कीमतें आम आदमी को कितने दिन की राहत दे पाती हैं। दिल्ली से नवीन नेगी, BBC।
अगली खबर राजस्थान से, जहां राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के साथ जुड़े हरिजन शब्द को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम अनुसूचित जाति संगठनों की आपत्ति के बाद उठाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य में ऐसे करीब 100 स्कूल हैं जिनके नाम में बदलाव किया जा रहा है। इस फैसले पर समाजशास्त्री कहते हैं कि ये परिवर्तन अध्ययन का विषय है। सुनिए नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
सालों गुजर गए जब कुछ सरकारी स्कूलों के नाम की इबारत में हरिजन शब्द जुड़ा रहा। अब दलित संगठनों ने इस पर आपत्ति की है क्योंकि उन्हें लगता है यह शब्द हीनता के भाव पैदा करता है। शिक्षा विभाग उस वक्त हरकत में आया जब सीमावर्ती गंगानगर जिले में दलित संगठनों ने इस पर आवाज बुलंद की। राज्य के शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल ने BBC से कहा, नाम हटाने की दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। निदेशक कहते हैं कि ऐसे स्कूलों की जानकारी जुटाई जा रही है।
अभी हमने डायरेक्टरेट से सभी DO को लेटर लिखा है कि ऐसे जितने भी प्रपोजल हैं आप हमें भिजवा दें, फिर राज्य सरकार स्तर पर जो भी फैसला होगा हम आगे की कार्रवाई कर पाए। मानवाधिकार आयोग और पुलिस से भी और सभी जगह से सर्कुलर ऐसे निकल चुके थे कि इस तरीके का वर्ड यूज नहीं करना है, और जो अम्बेडकर संगठन और दूसरे संगठनों ने हमें ज्ञापन दिया था उन्होंने ये बताया कि हरिजन आज के समय में कहीं यूज नहीं होता और थोड़ा संवैधानिक नहीं है वर्ड ये, इसलिए फिर हमने सर्कुलर निकाला था ताकि सभी जगह से एक बार हम डेटा कलेक्ट कर लें, फिर राज्य सरकार जो भी उचित समझेगी वो दोनों तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट करके फैसला लें। 15-20 तो गंगानगर की आसपास की है और हो सकता है ये संख्या 100 के आसपास पहुंच सकती है पूरे राजस्थान को मिला।
राज्य में कोई 60,000 सरकारी स्कूल हैं। इनमें कुछ स्कूलों के नामकरण उनकी बस्तियों और इलाके के नाम पर कर दिया गया था। अनुसूचित जाति संगठनों ने सरकार की इस पहल को ठीक बताया है। दलित अधिकार कार्यकर्ता सतीश कुमार कहते हैं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि चमार है, हरिजन है, चूड़ा है, और ये ऐसे शब्द हैं जो डेरोगेटरी वर्ड है। इसके हटने से बिल्कुल ये है कि एक क्योंकि आप देखेंगे कई सारे स्टेट्स में आज भी हरिजन शब्द बोलते हैं दलितों को, तो दलितों ने ये राहत महसूस करी है कि दलित बच्चों को कम से कम उस डेरोगेटरी अपमानजनक शब्द से तो नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि लगातार बार बार हरिजन सुनते सुनते उनको ये लगता है कि अब बहुत हो गया, बस ये हरिजन शब्द को हटा के अच्छा काम किया।
समाज शास्त्री डॉक्टर राजीव गुप्ता कहते हैं हरिजन शब्द गांधी के सुधारवादी और दलित शब्द भीमराव अंबेडकर के छुआछूत विरोधी आंदोलन की याद दिलाते हैं। वे पूछते हैं कहीं उस इतिहास को भूल तो नहीं जाएंगे। डॉक्टर गुप्ता कहते हैं समाज शास्त्र के लिए यह बदलाव अध्ययन का विषय है।
हरिजन और दलित शब्द जो कि प्रतिरोध का, दमन के खिलाफ एक आंदोलन का है और स्वाधीनता संघर्ष के अंदर जाति और जाति केंद्रित अस्पृश्यता के उन्मूलन का जो एक बड़ा क्रांतिकारी और सुधारवादी आंदोलन था वो इतिहास के पटल से कहीं मुझे विलुप्त होता हुआ नजर आता है।
कानून की किताब और शास्त्र कहते हैं कि उनकी निगाह में सब बराबर है, लेकिन दलित संगठन कहते हैं कि इंसान और इंसान के बीच भेदभाव की ये दीवार अब भी बहुत मजबूती से खड़ी है। उन्हें लगता है ऐसे बदलाव से वो टूटे ना सही, कमजोर जरूर होगी। नारायण बारेठ, BBC, जयपुर।
और अब आज के अखबारों के बाद भूमिका राय के साथ। जी भूमिका, क्या है आज की सुर्खियां?
जी वात्सल्य, सबसे अहम खबर है कि कश्मीर पर जो अमित शाह के हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 हटाया गया उस पर अपना एक विचार दिया। उन्होंने लिखा कश्मीर में नहीं दिमाग में है पाबंदी, ये उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है। इसके अलावा बिहार से एक खबर है जहाँ पर राबड़ी देवी मीसा भारती पर ऐश्वर्या राय जो कि तेजस्वी यादव की पत्नी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि वो उन्हें घर से निकालने की कोशिश कर रही थी। रविवार को राबड़ी देवी आवास पर काफ़ी कुछ वहां पर हुआ, उसके बाद कुछ पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे जहां पे ऐश्वर्या के माता पिता भी मौजूद थे, और अभी फिलहाल ये है कि वो कहां हैं इस बारे में जानकारी तो नहीं है। वो अपने माता पिता के साथ चली गई या राबड़ी आवास पर ही हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये कल पहली बार ऐसा था कि ऐश्वर्या ने मीडिया से बात की है। ये सारे मामले पे तलाक का मामला चल रहा है उनका और तेजस्वी यादव का। और कीमतों पर अंकुश के लिए प्याज के निर्यात पर रोक, हमने एक रिपोर्ट भी सुनाई नवीन नेगी की, जिसमें अब जो और राज्य सरकार से अभी तक राज्य सरकार को क्या स्टॉक के लिए रहता था, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने स्टॉक को लेकर के नियम बनाए हैं। अब प्याज की बात करें तो प्याज से जुड़ी एक हेल्थ की भी खबर है कि प्याज से कैंसर का खतरा कम होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया कि जो लोग कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन खाते हैं, खासतौर पर महिलाएं, उन्हें स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर होने की जो आशंका होती है वो काफी कम हो जाती है।
लेकिन ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब प्याज की कीमत आसमान।
बिल्कुल। और बेअंत के हत्यारे की फांसी अब उम्र कैद में बदली, ये खबर है। और इसके अलावा एक खबर और का जिक्र कर दूं, बरेली के मंदिर में पूजा से रोकी गई दलित लड़कियां, ये हैं आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां। बात से ले
जी, बहुत शुक्रिया भूमिका अखबारों की सुर्खियों के लिए। और श्रोताओं, आज सोमवार है और आपको इंतजार होता है वस्तुल्ला खान की पाकिस्तान डायरी का। वो आज बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की अमरीका यात्रा के असर की।
शनिवार को दिल्ली वासियों ने एयरपोर्ट पे अमेरिका पलट मोदी का ज़बरदस्त स्वागत किया, जैसे कोई हरिद्वार से वापस लौटे। रविवार को इस्लामाबाद वासियों ने इमरान खान का उसी तरह ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, जैसे कोई हज करके घर लौटे। मोदी भी खुश, इमरान भी खुश और उनके समर्थक तो इनसे भी ज़्यादा खुश। एक भारतीय जनता के लिए अमेरिका से हाउडी मोदी का तोहफा लाया, तो दूसरा संयुक्त राष्ट्र में अपनी कश्मीर वाली तकरीर जेब में डाल के लाया। दोनों तरफ से दावा हुआ हमारा नेता जीत गया। क्या जीत गया ये पता नहीं, बस जीत गया। भारतीय टीवी चैनल्स देखो तो लगता है दुनिया में सिवाय हाउडी मोदी के इस वक्त कोई चर्चा नहीं। इस बार मोदी ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में वो कर दिखाया जो नेहरू से मनमोहन सिंह तक कोई ना कर पाया। नेहरू ऐसा क्या ना कर सका जो मोदी ने कर दिया, ये कोई नहीं बता रहा। बस कर दिया, बस हो गया, क्या ये काफ़ी नहीं? यही हाल पाकिस्तानी गोदी मीडिया का भी है। 100 में से 95 चैनल्स खोलें तो लगता है कश्मीर का मसला जैसा इमरान खान ने पूरे विश्व को समझा दिया है, वैसा जिन्ना साहब से लेकर नवाज शरीफ तक कोई ना समझा सका। ऐसा क्या नया इमरान खान ने कह दिया जो लियाकत अली खान का भारत को दिखाया जाने वाला मुक्का और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हज़ार साल तक जंग लड़े वाला नारा भी ना समझा सका? बस समझा दिया, ज़्यादा बकबक नहीं। दोनों ओर जिस तरह मोदी और इमरान खान के मंत्री और समर्थक और गज़गज़ भर के सलाम करने वाला मीडिया पानी में मधानी चला के इसे लस्सी बताने की कोशिश कर रहा है, इस पे मुझे वो वाकया याद आ रहा है जब एक साइंस टीचर ने बच्चों से कहा कि कल हर बच्चा कोई अद्भुत चीज़ बना के लाएगा। अगले दिन एक बच्चा टायर की चप्पल बना के लाया, एक बच्चा टूटे हुए बल्ब की किरचियों से गांधी जी की तस्वीर बना के लाया, एक बच्चा कार्डबोर्ड से रंगदार अंतरिक्ष रॉकेट बना लाया। इन सब की बहुत वाह वाह हुई। एक बच्चा कोने में बैठा था, टीचर ने पूछा आप क्या लाए हो? उसने लकड़ी का छोटा सा पहिया बस्ते से निकाल के सामने रख दिया। टीचर ने पूछा इसमें अद्भुत क्या है, ऐसा पहिया तो 8000 वर्ष से हम सब देख रहे हैं। बच्चे ने तुरंत कहा आप 8000 वर्ष से ज़रूर देख रहे होंगे, पर सर ये वाला पहिया मैंने खुद बनाया है। लड़ा होगा जिन्ना से लेकर नवाज शरीफ तक कश्मीर का मुकदमा हर किसी ने, पर यह मुकदमा इमरान खान ने तो पहली बार लड़ा है। हुआ होगा भारी स्वागत नेहरू का अमेरिका में, पर मोदी जी का तो पहली बार हुआ है ना, इसलिए इस कारनामे पे वाह वाह तो बनती है। वो डायलॉग तो आप सब ने सुना ही होगा, जहां हम खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है।
पाकिस्तान डायरी पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और श्रोताओं, अखबारों की समीक्षा में अभी भूमिका राय ने भूल से ऐश्वर्या राय को तेजस्वी यादव की पत्नी का, वो तेज प्रताप की पत्नी है। और अब खेल का साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कोरियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल कल शीर्ष वरीयता हासिल जापान के केंटो मोमोता ने अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में उन्होंने दूसरी वरीयता हासिल चीन ताइपे के चौ तियन चेन को 21-19, 21-17 से बात दी, जबकि महिला एकल वर्ग का खिताब सातवीं वरीयता हासिल चीन की ही बिंग जियाओ ने जीता। फाइनल में उन्होंने छठी वरीयता हासिल थाईलैंड की रथ चानोक इंतानोन को 18-21, 24-22, 21-17 से हराया। और अब समीक्षा। क्रिकेट, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, जिया लागे ना। तभी तो युवराज सिंह ने एक चैनल से कहा, करियर के अंतिम पड़ाव पर उन्हें टीम प्रबंधन का साथ नहीं मिला तो सुरेश रैना ने भरी हुंकार। एक अखबार से बोले, भारत के लिए नंबर 4 पर खेल सकता हूं। युवराज सिंह का मलाल और सुरेश रैना का सवाल कहां तक ठीक है? पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता रहे अशोक मल्होत्रा कहते हैं,
जितने भी हमारे महान खिलाड़ी हैं कोई भी आसानी से नहीं जाता, हर एक को कुछ ना कुछ शिकायत रह जाती। जहां तक युवराज का सवाल, उनको काफी मौके मिले थे और उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। कैंसर के बाद वो फिटनेस लेवल, वो जो पैनापन उनमें दिखाई नहीं दे रहा, उनको निराशा जरूर है कि उनको यो टेस्ट पास करना पड़ा, उसके बाद उनको टीम में नहीं लिया गया और फिर उनको बोला गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके खेलिए। लेकिन हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं राइटिंग वॉज ऑन द वॉल कि आपका काम खत्म हो गया। राइटिंग इज ऑन द वॉल फॉर सुरेश रैना के लिए भी, कहीं ना कहीं ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं आप चयनकर्ताओं से भी और शायद अपने आप से।
दिन रात बात बेबात पर क्रिकेट की बात, आकाश के जगमगाते सितारे शानो शौकत, तो फिर बैठे बिठाए क्रिकेट छोड़कर आफत कौन मोल ले। एक पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने जरूर क्रिकेट की पिच तब छोड़ी जब वो कुछ और जम सकते थे, लेकिन इतना साहस कोई और दूसरा नहीं कर सका। अशोक मल्होत्रा याद कर कहते हैं,
गावस्कर को अगर आप छोड़ दें, बाकी कोई भी खिलाड़ी, मैं यहाँ तक कहूंगा कि अगर आप कपिल देव, सचिन, सौरभ या वीवीएस या राहुल की बात करें, कोई भी खिलाड़ी अपने आप नहीं गया, क्योंकि हमारे देश में हीरो वर्शिप, इतनी ऊंचाई पर जब पहुंचते हो वहाँ आप जब नीचे देखते हैं तो शायद खौफ लगता है, जिसके चलते आप जाना नहीं चाहते।
वाकई क्रिकेट का नाता तो भारत में भक्त और भगवान जैसा ही है, लेकिन कई बार चयनकर्ता भी कमाल करते हैं। नंबर 4 अब तो हजार बार पुकारा जा चुका है, तभी तो सुरेश रैना को भी लगा उनकी रैना पूरी तरह बीती नहीं। अशोक मल्होत्रा जवाब देते हैं,
म्यूजिकल चेयर वाली हालत कर दी। आप केएल राहुल की बात करें, रायडू की बात करें, विजय शंकर की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, लगातार एक खिलाड़ी पे आपने कभी भरोसा नहीं जताया और यही कारण है कि अभी तक हम 4 नंबर पर सेटल नहीं हो पा रहे। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर को अगर ज्यादा मौका दिया जाता तो हो सकता है कि वो 4 नंबर पर सेटल हो जाए, जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज में बैक टू बैक अर्धशतक लगाए हैं, आक्रामक खिलाड़ी हैं।
रही बात महेंद्र सिंह धोनी की, तो उनका क्या होगा? एक चयनकर्ता का अनुभव लिए अशोक मल्होत्रा कहते हैं,
क्योंकि मैं खुद चयन करता रहा हूँ, जब इतने बड़े खिलाड़ी को जब आप बाहर बिठाते हैं तो आमतौर पर ये फैसला बीसीसीआई का होता है, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से हिंट देते कि अब इस खिलाड़ी के जाने का वक्त हो गया। हो सकता है धोनी जिस तरह 2020 क्रिकेट नहीं खिलाए जा रहे, उन तो ऐसा लगता है कि उनको एक तरह से अंदेशा जरूर है कि शायद उनको अब लिया नहीं जाएगा या उनको टीम से बाहर कर दिया जाएगा।
वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, दिल भले ही क्रिकेट को छोड़ने ना दे, लेकिन शरीर जरूर दबे पांव कहता है कि अब फुर्सत के दिन आ गए। उधर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना दमदार खेल जारी रखते हुए कल स्पेन को 5-1 से करारी मात दी। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल ब्रिटेन को 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर रोक दिया। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने पहले मैच में ब्रिटेन को 2-1 से हराया था। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। पिछले 4 दिनों में देश भर में भारी बारिश की वजह से 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में राइट टू रिप्लाई के तहत दिए गए भारत के जवाब पर पाकिस्तान ने भी अपना जवाब दिया है और आरोप लगाया है कि भारत कश्मीर मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के पूर्व प्रोसिक्यूटर जनरल ने बीबीसी से कहा कि उनके देश के पास ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ जांच करें। जमैका की धावक शेली एन फ्रेजर प्रिस ने कतर में चल रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस जीत ली है। 100 मीटर रेस में ये उनका चौथा पदक है। हांगकांग में पुलिस और लोकतंत्र के समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों की खबर है। हजारों की संख्या में लोग हांगकांग की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी रविशंकर कुमार के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।